अध्याय एक, सामाजिक स्तरीकरण तथा विभेदीकरण। मानव समाज के लंबे इतिहास में ऐसा कोई युग नहीं मिलता जिसमें सभी व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक दूसरे के बिल्कुल समान रही हो। कुछ विद्वान आदिम समाज के उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि सामाजिक असमानता की धारणा को एक नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका विचार है कि आदिम समाजों में लगभग सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक दूसरे के समान थी। वास्तव में यह धारणा भ्रमपूर्ण है। आदिम समाजों में भी मुखिया की प्रभुता, व्यक्तिगत शक्ति और पारिवारिक संपत्ति के बीच ऊंच नीच की इस स्थिति को हम सामान्य शब्दों में सामाजिक स्तरीकरण कह सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का उद्देश्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि, योग्यता, कार्यक्षमता और शारीरिक शक्ति के अनुसार उनकी स्थिति और कार्यों का निर्धारण करके सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ बनाना होता है। सामाजिक स्तरीकरण यद्यपि सभी समाजों की एक अनिवार्य विशेषता है, लेकिन विभिन्न समाजों में इसका रूप भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ समाजों में यह भिन्नता जन्म के आधार पर होती है, जबकि कुछ समाजों में इसका निर्धारण व्यक्तियों की कुशलता और योग्यता के आधार पर किया जाता है। पहली स्थिति को बंद स्तरीकरण और दूसरी स्थिति को खुला हुआ स्तरीकरण कहते हैं। प्रस्तुत विवेचन में हम स्तरीकरण के अर्थ, आवश्यकता और आधारों का संक्षेप में स्पष्ट करके इसके विभिन्न स्वरूपों को समझने का प्रयत्न करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ। सामाजिक स्तरीकरण वह व्यवस्था है जो समाज को विभिन्न स्तरों में विभक्त करकर सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करती है। सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समूहों को एक विशेष स्तर प्रदान करके समाज को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न सदैव से होता रहा है। संक्षेप में, स्तर निर्माण की इस क्रिया का नाम सामाजिक स्तरीकरण है। जिम बट के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त कर देने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सभी समूह और श्रेणियां उच्चता तथा अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधी हों। मूरे ने सामाजिक स्तरीकरण को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए कहा है, स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में विभक्त कर दिया गया हो। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण का रूप एक पीढ़ी के समान है जिसमें कुछ समूह ऊपर होते हैं और कुछ की तुलना नीचे। सदरलैंड और वुडवर्ड ने स्थिति संबंधी भिन्नता के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है, स्तरीकरण केवल अंतःक्रियाओं अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ सामाजिक मूल्यों अथवा नियमों के अनुसार समाज अनेक उच्च तथा निम्न समूहों में विभक्त हो जाता है। वह समूह एक दूसरे के पुनः पृथक न रहकर कार्यात्मक रूप से एक दूसरे के सहयोगी होते हैं तथा अपने अपने कार्यों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ बनाने में योगदान होते हैं। सामाजिक विभेदीकरण। सामाजिक विभेदीकरण की अवधारणा स्तरीकरण से संबंधित होते हुए भी उससे भिन्न है। किसी समाज में सामाजिक स्तरीकरण के बिना ही सामाजिक विभेदीकरण का होना संभव है, लेकिन सामाजिक विभेदीकरण के बिना सामाजिक स्तरीकरण का विकसित होना संभव नहीं है। इस स्थिति को समझने के लिए आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सामाजिक विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों को विशेषताओं को कुछ मूर्त आधारों पर एक दूसरे से भिन्न मान लिया जाता है तथा अधिकांशतः व्यक्तियों द्वारा इन विभिन्नताओं को स्वीकृति प्रदान की जाने लगती है। इस रूप से सामाजिक विभेदीकरण एक अत्यधिक प्राचीन तथा सार्वभौमिक घटना है। मनुष्य जब बर्बरता और असभ्यता के स्तर पर था तथा व्यक्तियों की योग्यता और कुशलता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से भिन्न भिन्न अधिकार तथा प्रस्तुति देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भी उनके बीच आयु और लिंग के आधार पर एक स्पष्ट भेद अवश्य किया जा सकता था। यह सामाजिक विभेदीकरण की आरंभिक स्थिति थी जिसमें समान आयु और लिंग के व्यक्ति अपने से भिन्न आयु और लिंग के व्यक्तियों से स्वयं को कुछ पृथक समझते थे। सभ्यता के विकास के साथ जब समूहों का आकार बढ़ा तब विभिन्न प्रकार की शारीरिक बनावट रंग तथा व्यक्तित्व कार्यों के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच विभेदीकरण किया जाने लगा। आज प्रत्येक समाज समूह उस समूह को भी अपने से भिन्न समझता है जिसमें धार्मिक शिक्षा प्रथागत व्यवहार तथा उपलब्धियां उससे भिन्न हो। वास्तविकता यह है कि यदि समाज में सभी व्यक्तियों की आयु लिंग प्रजाति शिक्षा भाषा धार्मिक विश्वास उपलब्धियां तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति समान होती तो किसी प्रकार के विभेदीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत स्थिति यह है कि आज किसी भी व्यक्ति तथा समूह को दूसरे से पूर्णतः समान नहीं कहा जा सकता। यह असमानता कुछ मूर्त आधारों पर भी स्पष्ट नहीं होती बल्कि इसी असमानता के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के बीच अंतःक्रिया भी होती है और वे एक विशेष ढंग से कार्य करते तथा अनुभव करते हैं। एक पुरुष के रूप में हम पुरुषों से जितनी स्वच्छंदता और निकटता से संबंध स्थापित करते हैं वैसा स्त्रियों से संभव नहीं है। इसी प्रकार समान आर्थिक स्थिति तथा समान सांस्कृतिक विशेषताओं वाले लोगों से हम जितनी निकटता अनुभव कर सकते हैं वह हम से भिन्न आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं वाले लोगों से संभव नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक विभेदीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है तथा इसका संबंध सभ्यता के विकास के सभी स्तरों से है। सामाजिक विभेदीकरण की परिभाषा। सामाजिक विभेदीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न रूप से परिभाषा किया है। इसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं की सहायता से सामाजिक विभेदीकरण की प्रकृति को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। न्यू मेयर के अनुसार सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जो अनेक जैविकीय आनुवंशिक और भौतिक विशेषताओं जैसे आयु लिंग प्रजाति वंश व्यवसाय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सामाजिक स्थिति उपलब्धियों की रचना तथा सामाजिक संबंधों के आधार पर व्यक्तियों और समूहों के बीच विभिन्नता को स्पष्ट करती है। इस प्रकार सामाजिक भिन्नताएं विभेदीकरण की प्रक्रिया का आधार भी है और उपज भी है। उस कथन द्वारा न्यूमर ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों तथा समूहों के बीच पाई जाने वाली भिन्नताएं जब अनेक भौतिक आधारों पर स्पष्ट होती है केवल तभी इसे सामाजिक विभेदीकरण कहा जा सकता है। दूसरा तथ्य यह है कि सामाजिक भिन्नताएं विभेदीकरण का कारण ही नहीं बल्कि एक बार विभिन्न आधारों पर जब विभेदीकरण किया जाने लगे किया जाने लगता है तो इसमें अनेक आधारों पर भी विभेदीकरण में वृद्धि होने लगती है। लैमले ने सामाजिक विभेदीकरण को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए लिखा है। सामाजिक विभेदीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्तियों में भेदभाव की भावना विकसित होती है। इस कथन से स्पष्ट हुआ कि सामाजिक विभेदीकरण किसी संगठन अथवा राजनीतिक सत्ता द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, बल्कि अनेक आधारों पर स्वयं ही विकसित होने की प्रक्रिया है। जॉर्ज लुडबंग का कथन है कि सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामूहिक रूप से इस तथ्य को मान्यता दी जाती है अथवा ऐसा मान लिया जाता है कि विभिन्न व्यक्तियों, श्रेणियों अथवा समूह की विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अपने कथन को स्पष्ट करते हुए लुंडबर्ग ने बताया है कि व्यक्तियों में पाए जाने वाले कोई भी विभेदपूर्ण नहीं होते, यहाँ तक कि लिंग अथवा वंशानुक्रम पर आधारित जिन जैविकीय विभेदों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उनका अस्तित्व भी केवल इसलिए है कि कालांतर में उनके साथ कुछ विशेष सामाजिक मूल्य जुड़ जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक रूप से यदि स्त्री और पुरुष के बीच कोई विभेद स्वीकार न किया जाए तो इस जैव के भिन्नता का कुछ भी महत्व नहीं है। इन सभी परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक समाज में व्यक्तियों तथा समूहों के बीच आयु, लिंग, संपत्ति, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, संस्कृति अथवा व्यवसाय के आधार पर विभेद किया जाता है तो लेकिन इन आधारों पर उनके बीच किसी प्रकार का संस्थागत स्तरण ना हो तो विभाजन की इस प्रक्रिया को हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक विभेदीकरण समाज का एक समतल विभाजन है, उदर्ग विभाजन नहीं। सामाजिक विभेदीकरण की विशेषताएं। एक तटस्थ प्रक्रिया। सामाजिक विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण समाज विभिन्न आधारों पर अनेक छोटे बड़े समूहों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से किस समूह की स्थिति दूसरे की तुलना में उच्च है अथवा निम्न है। उदाहरण के लिए किसी समुदाय के लोगों के बीच आयु अथवा लिंग के आधार पर सरलतापूर्वक विभेदीकरण किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया यह नहीं बतलाती कि लिंग के आधार पर स्त्रियों एवं पुरुषों में से कौन दूसरे से श्रेष्ठ है अथवा आयु के आधार पर युवा, पौर तथा वृद्ध व्यक्तियों में किसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विभेदीकरण संपूर्ण समाज को अनेक समतल समूहों में विभाजित करने वाली एक प्रक्रिया है। सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। विभेदीकरण की प्रक्रिया इस अर्थ में स्वाभाविक है कि इसके अंतर्गत ना तो योजनाबद्ध रूप से विभिन्न समूहों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है और ना ही यह किसी प्रकार की सामाजिक नीति पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न समूहों के बीच जिन असमानताओं को स्पष्ट किया जाता है वे बहुत ही प्राकृतिक और स्वाभाविक होती है। उदाहरण के लिए आयु, लिंग, प्रजातीय भिन्नताएं, धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक भिन्नताएं आदि ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर व्यक्ति बिना किसी प्रयत्न के ही स्वयं ही कुछ समूहों में विभाजित होते हैं। विभेदीकरण की यही विशेषता इसे सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया से पूर्णतः पृथक कर देती है। तीसरा, व्यक्तिगत चेतना का समावेश। सामाजिक विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रति सभी व्यक्ति चेतन अथवा जागरूक रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार की असमानताओं के लिए व्यक्तियों को कोई निर्देश न मिलने पर भी व्यक्ति यह जानते हैं कि वे किस श्रेणी में आते हैं तथा किस प्रकार अन्य लोगों से भिन्न हैं। व्यक्ति मानसिक रूप से इस तथ्य के प्रति चेतन रहते हैं कि वे उन लोगों से भिन्न हैं जिनकी आयु, शिक्षा, लिंग, प्रजाति अथवा वेशभूषा उनसे भिन्न है। यह चेतना बहुत कुछ सामाजिककरण अथवा सामाजिक सीख का परिणाम है। अव्यक्तित्व प्रक्रिया। सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया कभी कभी व्यक्तित्व नहीं होती बल्कि अव्यक्तित्व होती है। उदाहरण के लिए संघर्ष एक अव्यक्तित्व प्रक्रिया है जिसमें संघर्ष करने वाले दोनों पक्ष एक दूसरे के व्यवहारों तथा साधनों की अधिक से अधिक जानकारी करके उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी ओर विभेदीकरण इस अर्थ में अव्यक्तित्व है कि इसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ईर्ष्या, द्वेष अथवा विरोध प्रदर्शित नहीं करते बल्कि उन सभी को अपने से कुछ भिन्न समझते हैं जिनकी जैविकीय, सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं हमसे भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए विभेदीकरण की प्रक्रिया यह तो स्पष्ट करती है कि गोरी प्रजाति मंगोलॉयड प्रजाति से भिन्न है, लेकिन यह नहीं कहती कि गोरी प्रजाति के सभी लोग मंगोलॉयड प्रजाति के लोगों को अपने से नीचा अथवा उनसे संघर्ष करें। पांचवा, सामाजिक मूल्यों का समावेश। सामाजिक विभेदीकरण की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसके विभिन्न आधारों पर निर्धारण सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए आदिम समाजों में आयु और लिंग का अधिक महत्व होने के कारण वहां उन्हें सामाजिक विभेदीकरण सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जा सकता है, जबकि पश्चिमी समाजों में सामाजिक मूल्यों में आयु और लिंग का अधिक महत्व न होने के कारण प्रजाति, शिक्षा और धर्म सामाजिक विभेदीकरण का मुख्य आधार है। जो समाज भौतिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए हैं वहाँ धन संपत्ति के आधार पर एक स्वाभाविक विभेदीकरण विकसित हो जाता है। इसी स्थिति ने वर्ग विभाजन को इतना स्पष्ट रूप दे दिया है। तात्पर्य यह है कि सामाजिक मूल्य ही यह निर्धारित करते हैं कि सामाजिक विभिन्नता का निर्धारित करने वाले आधार क्या होंगे। छठा, मूर्त तथा बाहरी आधार। सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण का केवल उन्हीं आधारों पर हो सकता है जो मूर्त, मापनीय और बाहरी हो। उदाहरण के लिए आयु, लिंग, प्रजाति, धर्म, शिक्षा, संपत्ति तथा सांस्कृतिक व्यवहार ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है तथा बिना किसी विवाद के उनके आधार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच भेद स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरी ओर व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताएं योग्यता, स्वभाव, शक्ति तथा ज्ञान आदि ऐसे आधार हैं जो ना बाहरी हैं और ना ही तो इनकी कोई सर्वसम्मत माप की जा सकती है। ऐसे आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण तो संभव है लेकिन सामाजिक विभेदीकरण नहीं। एक सर्वव्यापी प्रक्रिया। एक ऐसा कोई भी युग अथवा समाज नहीं मिल सकता जिसमें किसी न किसी आधार पर सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया न पाई जाती रही हो। विभेदीकरण का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का। सभ्यता के आरंभिक स्तर पर आयु तथा लिंग सामाजिक विभेदीकरण के मुख्य आधार थे, जबकि आज इनके अतिरिक्त प्रजाति, शिक्षा, संपत्ति की भिन्नता के आधार पर भी सामाजिक विभेदीकरण एक स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसी दृष्टिकोण से सामाजिक विभेदीकरण को एक सर्वव्यापी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्तरीकरण तथा विभेदीकरण में अंतर। सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि यह दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक होते हुए भी अपनी प्रकृति से एक दूसरे से भिन्न हैं। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि हम इनके बीच पाई जाने वाली प्रमुख भिन्नताओं को स्पष्ट करें और सामाजिक स्तरीकरण की धारणा को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करें। पहला, सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अथवा जागरूक दशा में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य कुछ विशेष व्यक्तियों को अधिक अधिकार देना और उनके हितों को सुरक्षित रखना होता है। इसके विपरीत सामाजिक विभेदीकरण कभी भी योजनाबद्ध रूप से विकसित नहीं होता, बल्कि इसकी प्रकृति बहुत कुछ स्वाभाविक होती है। दूसरा, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था भेदभाव पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण समाज अनेक छोटे बड़े स्तरों में बटा होता है और प्रत्येक को एक दूसरे की तुलना में कम या अधिक अधिकार मिले होते हैं। इसका तात्पर्य है कि स्तरीकरण का रूप श्रेणीबद्ध होता है, जबकि विभेदीकरण समाज का एक दूसरे के समकक्ष विभाजन है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विभेदीकरण का आधार आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म अथवा शिक्षा आदि कुछ भी हो सकता है, लेकिन विभेदीकरण के अंतर्गत कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि इनमें किस वर्ग की स्थिति ऊंची है अथवा किसकी नीची। तीसरा, सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया स्तरीकरण की तुलना में अधिक स्पष्ट और अधिक सरल होती है। इसका कारण यह है कि विभेदीकरण केवल उन्हीं आधारों पर होता है जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हो। इसके विपरीत सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था का संबंध विशेष रूप से पक्षपातपूर्ण मनोवृत्तियों और प्रतिष्ठा के धारणा से है। इन दोनों विशेषताओं का स्पष्ट रूप से मापन करना अत्यधिक कठिन है। यही कारण है कि स्तरीकरण की प्रक्रिया को अधिक जटिल माना जाता है। चौथा, ओल्सेन ने बताया है कि सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया अंतर्व्यक्तित्व है, जबकि स्तरीकरण की प्रक्रिया व्यक्तित्व है। इसका अर्थ है कि विभेदीकरण के अंतर्गत एक दूसरे से भिन्न होने पर भी किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शित नहीं करता। इसके विपरीत स्तरीकरण के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति दूसरे स्तर के व्यक्तियों में से प्रतियोगिता करने का प्रयत्न करता है और साधारणतः एक दूसरे का विरोध होता है। यही कारण है कि स्तरीकृत व्यवस्था में सामाजिक संघर्षों की मात्रा भी अधिक होती है। पांचवा, साधारणतः सामाजिक स्तरीकरण का संबंध उपयोगिता से माना जाता है। इसके विपरीत ऐसी कोई कसौटी नहीं है जिसके आधार पर सामाजिक विभेदीकरण की उपयोगिता को सिद्ध किया जा सके। छठवां, विभेदीकरण की प्रक्रिया का इतिहास स्तरीकरण से अधिक पुराना है। विभेदीकरण का अस्तित्व मानव जीवन के आरंभिक समय से ही विद्यमान है, जबकि स्तरीकरण का विकास तब हुआ जब समाज को व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता। प्रत्येक समाज में दो उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न व्यक्तियों को पृथक पृथक कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपता है। प्रथम तो इसलिए कि व्यक्तियों में एक विशेष स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न की जा सके, और दूसरा उद्देश्य यह रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की इच्छा बनी रहे। इस प्रकार निम्नलिखित आधारों पर स्तरीकरण को समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है। पहला, प्रत्येक समाज में कुछ पदों को उच्च समझा जाता है और कुछ को निम्न, क्योंकि किसी पद से संबंधित भूमिका को पूरा करने के लिए अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ पदों पर बिना किसी उचित प्रशिक्षण के भी कार्य किया जा सकता है। विभिन्न पदों से संबंधित उत्तरदायित्वों की मात्रा भी अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक पद के महत्व को देखते हुए उससे संबंध व्यक्तियों को अधिक अथवा कम परिश्रमिक भी दिया जाता है। यह स्थिति समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर देती है, जिसे रोक सकना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। यद्यपि साम्यवादी देश अपने समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वहाँ भी व्यक्ति को अपने पद से संबंधित समान होने का उत्तरदायित्व के आधार पर भिन्न भिन्न मात्रा में पुरस्कार मिलता है और एक दूसरे से भिन्न सामाजिक स्थिति प्रदान करते हैं। दूसरा, प्रत्येक समाज में अपने सदस्यों की कुशलता और योग्यता में वृद्धि करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित करता है। आप एक ऐसी दशा की कल्पना कीजिए जिनमें सभी व्यक्तियों को समान स्थितियां प्रदान कर दी जाएं। इस दशा में कुछ व्यक्ति अपनी योग्यता से अधिक पुरस्कार प्राप्त करने लगेंगे, जबकि कुछ व्यक्तियों की योग्यता तथा कुशलता कम होने लगेगी, क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रेरणाएं नहीं मिल सकेंगी। इस प्रकार दोनों ओर से समाज का संतुलन बिगड़ जाने की संभावना हो सकती है। इस संभावना को समाप्त करने के लिए समाज विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न सामाजिक पद प्रदान करके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। तीसरा, डेविस का विचार है, सामाजिक असमानता अचेतन रूप से विकसित एक विधि है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को यह विश्वास दिलाता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदों पर सबसे अधिक योग्य व्यक्ति ही कार्य कर रहे हैं। यह स्थिति तभी संभव है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार कार्य करने का अवसर मिले। इससे व्यक्ति में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा बनी रहती है और मनोवैज्ञानिक रूप से वह अपनी स्थिति के प्रति संतोष रखता है। इस आधार पर भी स्थिरीकरण की एक आवश्यक सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को कौन सा स्तर दिया जाना चाहिए अथवा व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार निर्धारित की जाए, इसका समस्या को समाज कुछ विशेष आधारों की सहायता से सुलझाता है। यद्यपि स्तरीकरण के बहुत से आधारों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्यों और परिस्थितियों के आधार पर इनमें से कुछ तत्वों को मानकर सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को निश्चित रूप देता है। इसमें से कुछ प्रमुख आधार निम्न प्रकार हैं। पहला, आयु। प्रत्येक समाज व्यक्ति कोई भी स्थिति प्रदान करते समय उसकी आयु का विशेष ध्यान रखा जाता है। आयु का संबंध मानसिक परिपक्वता और अनुभव से है। कम महत्वपूर्ण स्थिति एक सामान्य आयु के व्यक्ति को भी दी जा सकती है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण पदों के लिए व्यक्ति को एक निश्चित आयु का होना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए भारत में 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं हो सकता। इसी प्रकार बच्चों, युवकों, पूर्व व्यक्तियों और वृद्धजनों की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था में तो आयु का महत्व इतना अधिक है कि परिवार, व्यवसाय और संपूर्ण समूह के व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति उसकी आयु पर ही सबसे अधिक निर्भर करती है। दूसरा, लिंग भेद। कुछ समाजों में लिंग भेद को भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार माना जाता है। सभ्यता के आरंभिक स्तर तक लिंग के आधार पर ही श्रम विभाजन और पदों का बंटवारा किया जाता था। स्त्रियों और पुरुषों की सामाजिक स्थिति एवं कार्यक्षेत्र एक दूसरे से भिन्न थे और किसी को भी दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त समाज में किए जाने वाले बहुत से कार्यों की प्रकृति स्वयं ऐसी होती है कि स्त्रियां या तो उन्हें कर नहीं सकती अथवा कुशलतापूर्वक नहीं कर पाती। स्वाभाविक है कि ऐसे कार्यों से संबंधित पद केवल पुरुषों को ही प्राप्त होने की संभावना रहती है। कुछ अशिक्षित समाजों में लिंग को स्तरीकरण का प्रमुख आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां स्त्रियों में शिक्षा का प्राय अभाव होता है, जबकि कुछ समाज स्त्रियों को पुरुषों से कम कुशल समझते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन सभी जानते हैं कि प्रथागत रूप से अमेरिका में कोई स्त्री राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी नहीं हो सकती। चौथा, संपत्ति। संपत्ति को सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार माना जाता है। पूंजीवादी समाजों में विशेष रूप से उन व्यक्तियों को उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त है जिनका उत्पादनों के साधनों पर सबसे अधिक अधिकार होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति गिरती जाती है, सामाजिक स्तरीकरण में भी उसका स्तर नीचा होता जाता है। जिन समाजों में वर्गत स्तरीकरण का महत्व अधिक होता है, वहाँ संपत्ति को स्तरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। चौथा, धार्मिक ज्ञान। कुछ समाजों में उन व्यक्तियों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं जिन्हें अपने समूह के धार्मिक विश्वासों का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उनकी आयु, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वर्तमान युग के प्रगतिशील समाजों में स्तरीकरण के इस आधार का महत्व निरंतर कम होता जा रहा है। केवल यह कुछ आदिम समाजों में ही धार्मिक ज्ञान व्यक्ति के स्तर निर्धारण को प्रमुख आधार रह गया है। पांचवा, शारीरिक तथा बौद्धिक कुशलता। वर्तमान युग में व्यक्ति की शारीरिक कार्य कुशलता और मानसिक योग्यता को उसकी स्थिति निर्धारण का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है। जैसे जैसे सामुदायिक जीवन के स्थान पर छोटे छोटे व्यावसायिक समूहों का महत्व बढ़ रहा है और दैतिक संबंधों में वृद्धि हो रही है, व्यक्ति के स्तर निर्धारण में आयु और लिंग का महत्व घटकर उसकी व्यक्तिगत योग्यता का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति आज सभी समाजों में है, चाहे वहाँ की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी हो, साम्यवादी हो अथवा पूंजीवादी हो। यही कारण है कि रूस और चीन जैसे साम्यवादी देशों में भी शारीरिक और बौद्धिक योग्यता के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्न भिन्न स्थिति प्रदान की जाती है। भले ही इन देशों में वर्ग रहित समाज की स्थापना का दावा किया जाता रहा हो। छठा, प्रजातीय भावना। कुछ समाजों में स्तरीकरण का आधार प्रजातीय भावना है। ऐसा उन समाजों में है जहाँ एक से अधिक प्रजातियों के लोग साथ साथ रहते हैं। ऐसे समाजों में उस प्रजाति के सदस्यों को उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त हो जाता है जिसका प्रशासनिक व्यवस्था और उत्पादन के साधनों पर अधिक नियंत्रण होता है, जबकि दूरस्थ साधनों से आकर किसी अन्य प्रजाति के सदस्यों को कठिन परिश्रम के बाद भी निम्न स्तर प्राप्त ही हो पाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में निग्रो व्यक्ति को एक विशेष प्रजाति की सदस्यता के कारण सामाजिक स्तरीकरण में निम्न स्थान प्राप्त है। इस स्थिति का कारण सामाजिक दूरी की भावना के आधार पर समझा जा सकता है। सातवां, जातिगत सदस्यता। भारत में जाति सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रमुख आधार रही है। समाज में व्यक्ति को मिलने वाला पद उनकी व्यक्तिगत सदस्यता के निर्धारित होती है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली और साधन संपन्न क्यों ना हो, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में साधारणतः उसे ऊंचा स्थान नहीं मिल पाता। यद्यपि यह सच है कि भारत में जाति प्रथा के बंधन अब बहुत कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी जाति का मनोवैज्ञानिक दबाव आज भी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि व्यक्ति के सामाजिक पद का निर्धारण करते समय उसकी जाति और वंश का ध्यान अवश्य रखा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। यद्यपि स्तरीकरण के प्रत्येक समाज की एक आवश्यक स्थिति है, लेकिन स्तरीकरण का स्वरूप प्रत्येक समाज में उसकी परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक विचारधाराओं और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। यह स्तरीकरण किसी समाज में स्थायी रूप से ले लेता है जिससे हजारों वर्षों तक कठिनता से ही कोई परिवर्तन हो पाता है। जैसा कि भारत में, जबकि कुछ समाजों में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, जैसा यूरोप के अधिकतर समाजों में। इसके आधार पर यह आवश्यकता हो जाता है कि वर्तमान विवेचन से हम सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूपों और उनके निर्णायक तत्वों को स्पष्ट रूप से समझ लें। सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख रूप से दो प्रकार होता है, बंद स्तरीकरण तथा खुला हुआ स्तरीकरण। पहला, बंद स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज अनेक ऐसे समूहों में विभाजित हो जाता है जिनकी प्रकृति पूर्णतः बंद होती है। इसका तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्था में व्यक्ति को एक बार जो स्तर प्राप्त हो जाता है उसमें वह किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाता। यद्यपि प्रजातीय और धार्मिक आधार पर ऐसा स्तरीकरण अनेक समाजों में पाया जाता है, लेकिन हिंदू समाज में बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। भारत में स्तरीकरण का प्रमुख आधार व्यक्ति की जातिगत सदस्यता है, इसीलिए कुछ व्यक्ति इसे बंद स्तरीकरण भी कह देते हैं। यद्यपि मुसलमानों, ईसाइयों और अमेरिका की कुछ जनजातियों में जातिगत स्तरीकरण के उदाहरणों की कमी नहीं है, लेकिन जातिगत स्तरीकरण का उल्लेख करते समय संभवतः ही भारत का उदाहरण सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है। भारत में जातिगत स्तरीकरण जितना व्यवस्थित, स्पष्ट और स्थिर रहा है, वैसा संसार के किसी अन्य समाज में देखने को नहीं मिलता। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के द्वारा एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान है, जिसके अनुसार वह अन्य सामाजिक समूहों अथवा जातियों से अपने संबंध स्थापित करता है। इस जातिगत स्तरीकरण में संपूर्ण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे चार प्रमुख सामाजिक समूहों में विभाजित है। प्रत्येक समूह के अंतर भी एक दूसरे की तुलना में उच्च अथवा निम्न स्तर की सैकड़ों जातियां हैं और सभी जातियों में अपनी जन्मजात स्थिति के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के संबंध स्थापित करने की आशा की जाती है। इस स्तरीकरण में ब्राह्मण जातियों के अधिकार एवं सामाजिक स्थिति सर्वोच्च है, जबकि शूद्र जातियों को इस स्तरीकरण में सबसे निचला स्थान दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बंद स्तरीकरण वह प्रणाली है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म अथवा आनुवंशिकता के आधार पर होता है तथा इसमें आजीवन किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रणाली में व्यक्ति को जन्म से ही कुछ समूहों के सदस्यों में ऊंचा अथवा कुछ निम्न समझ लिया जाता है और इसी के अनुसार उसे कुछ विशेष दायित्वों को भी पूरा करना होता है। अनेक सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक और संस्थागत प्रतिबंधों के द्वारा व्यक्ति की इस स्थिति को स्थायी रूप दे दिया जाता है। बंद स्तरीकरण में गतिशीलता का प्राय प्रभाव रहता है, प्रभावों और परंपराओं का महत्व अधिक होता है तथा सामाजिक परिवर्तन को साधारणतः कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। दूसरा, खुला हुआ स्तरीकरण। स्तरीकरण का दूसरा स्वरूप खुले हुए स्तरीकरण के रूप में हमारे सामने आता है। यह स्तरीकरण बंद स्तरीकरण से बिल्कुल भिन्न है। इसके अंतर्गत विभिन्न समूहों की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित नहीं होती, बल्कि सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता, कार्यकुशलता और शिक्षा और रुचि के आधार पर एक विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। यह स्तरीकरण एक प्रकार की स्वचालित विशेष व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर एक विशेष सामाजिक स्थिति और उससे संबंधित अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। गतिशीलता ऐसे स्तरीकरण का एक प्रमुख गुण है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब चाहे अपने प्रयत्नों के द्वारा इस स्तरीकरण में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है और कितनी भी उच्च स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद यदि प्रयत्न करना छोड़ दे तब नीचे की ओर आ जाता है। इस प्रकार खुले हुए स्तरीकरण का तात्पर्य अनेक मुक्त वर्गों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होना है। यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है कि इस तरह के स्तरीकरण में कौन कौन से कार्यों को पूर्ण करने पर व्यक्ति उच्च स्तर की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः यह सदस्यता व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है। व्यक्ति सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ अधिक उन्नति कर लेने से भी सामाजिक स्तरीकरण में महत्वपूर्ण स्थान ले सकता है, लेकिन सामान्यतः खुले हुए स्तरीकरण में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर उसे समाज में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं होती। खुले हुए स्तरीकरण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें आर्थिक वर्गों से बनने वाले समाज में देखने को मिलती है। इसलिए कभी कभी खुले हुए स्तरीकरण को वर्णगत स्तरीकरण भी कह दिया जाता है। एक वर्गगत समाज में व्यक्तियों की योग्यता, कुशलता, साहस और नैतिकता का एकमात्र मापदंड यह है कि उसने आर्थिक जीवन में कितनी सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार व्यक्तियों का संपत्ति तथा उत्पादनों के साधनों पर जितना अधिक अधिकार होता है सामाजिक व्यवस्था में उन्हें उतना ही ऊंचा स्थान मिल जाता है। औद्योगिक तथा व्यावसायिक उतार चढ़ाव के साथ जैसे जैसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है स्तरीकरण की व्यवस्था में उनका स्थान पहले की अपेक्षा उच्च अथवा निम्न हो जाता है। इस कारण इसे हम खुला हुआ स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न कारणों का उल्लेख किया है। एक और कुछ विद्वान अनेक प्रकार की मनोवृत्तियों और विश्वासों को सामाजिक स्तरीकरण का कारण मानते हैं तो दूसरी ओर अनेक विचारकों ने राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को स्तरीकरण का आधार मान लिया है। डेविस और मूरे जैसे विद्वान ने सामाजिक स्तरीकरण को कार्यकाल के रूप में उपयोगी बताते हुए पिछले विचारों की आलोचना की है। यद्यपि यह सभी विचार कार्यनात्मक दृष्टिकोण से एक दूसरे से कुछ भिन्न हैं, लेकिन इन सभी के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में एक आवश्यक स्थिति है और किसी न किसी रूप से सभी समाजों में इसका महत्व अवश्य बना रहता है। प्रस्तुत विवेचन से हम मार्क्स, वेबर, पॉर्सन, डेविस तथा मूरे के विचार के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करेंगे। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स का विचार है कि विभिन्न समाजों के इतिहास में मनुष्य को प्रेरणा देने वाली सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य के रहने का एक विशेष ढंग है। मार्क्स का कहना है कि जिस प्रकार जीवित रहने के लिए भोजन करना अनिवार्य है, उसी प्रकार व्यक्ति जिस ढंग से जीविका उपार्जित करता है उसका मस्तिष्क भी वैसा ही बन जाता है। इसका अर्थ है कि जीविका उपार्जित करने के ढंग में होने वाला परिवर्तन समाज में परिवर्तन की दिशा उत्पन्न करता है। आपका विचार है कि सामाजिक असमानता अथवा दूसरे शब्दों में सामाजिक स्तरीकरण एक स्वाभाविक घटना नहीं है। यदि सभी व्यक्तियों का सभी वस्तुओं पर अधिकार हो सकता है और जो व्यक्ति जिस भूमि पर कार्य करता है वह भूमि उसी के अधिकार में होती है तो उत्पादन की शक्तियों का वितरण धीरे धीरे अपने आप समान हो जाता है। लेकिन जब समाज में थोड़े से कुछ व्यक्तियों का ही भूमि पर अधिकार हो जाता है अथवा उत्पादन के साधनों पर अधिकार होने से श्रम शक्ति उनके अधीन हो जाती है, तो इससे सामाजिक असमानता का जन्म होता है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश समाजों में सर्वहारा वर्ग के पास ना तो अच्छे उपकरण होते हैं और ना ही उन्हें उत्पादन के दूसरे साधनों जैसे कच्चा माल, पूंजी अथवा प्राकृतिक साधनों की सुविधाएं मिल पाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी संपत्ति और श्रम को बेचना पड़ता है, जबकि मालिक वर्ग उनकी संपत्ति और पूंजी की सहायता से अधिक धन एकत्रित करता है और बड़े लाभ प्राप्त करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक साधनों के आधार पर अनेक वर्गों का निर्माण होता है। इनमें से प्रत्येक वर्ग को जीवन में विकास करने से संबंधित अवसर भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होते हैं। कुछ समय बाद यह अंतर केवल आर्थिक साधनों का ही नहीं रह जाता, बल्कि उनको फलस्वरूप मिलने वाली सुविधाएं अन्य सुविधाओं के अनुपात में निर्धारित होने लगती हैं। इसके फलस्वरूप बुर्जुआ वर्ग को राजनीतिक शक्ति मिल जाती है और कानूनों, साहित्यों तथा विज्ञानों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जबकि दूसरी ओर यह स्थिति सर्वहारा वर्ग की दशा को और अधिक गिरा देती है। उपयुक्त संपूर्ण दशाओं के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ग के अंतर एक विशेष वर्ग चेतना का विकास होता है, क्योंकि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के संबंधों में शोषण में वृद्धि होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ग पारस्परिक संघर्ष के द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण का वास्तविक कारण विभिन्न वर्गों के बीच संपत्ति और साधनों की असमानता होना है और इसके फलस्वरूप इसके बीच होने वाला संघर्ष है। मॉर्स का कथन है कि मानव समाज का संपूर्ण इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है और यही कारण है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक असमानता को प्रोत्साहन मिलता रहा है। मैक्स वेबर का सिद्धांत। वेबर मौलिक रूप से मार्क्स के विरोधी नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण के कारण के रूप में अधिक शक्तियों के प्रभाव को कुछ भिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। वेबर का कथन है कि मनुष्य केवल आजीविका प्राप्त करने के लिए ही नहीं काम करता, बल्कि कुछ दूसरे भी ऐसे कारण हैं जो उसके कार्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए सामाजिक असमानता तथा सामाजिक स्तरीकरण की दशा को अनेक कारकों के संबंध में समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था समाज में इसलिए उत्पन्न होती है कि कुछ व्यक्तियों के राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक अधिकारों का अपहरण कर लिया जाता है, जिससे उन्हें स्पष्ट होता है कि सामाजिक असमानता की स्थिति को व्यक्ति अपने आप में मिलने वाले विभिन्न अवसरों से संबंधित है। व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले अवसर दो दशाओं से संबंधित होते हैं, शक्ति की आर्थिक स्थिति तथा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर है कि आर्थिक इकाइयों पर उनके प्रभाव की मात्रा कितनी है, जबकि सामाजिक स्थिति से इस बात पर निर्भर है कि उसके रहन सहन, शिक्षा, वंश और वर्ग स्थिति के कारण उसे समाज में कितना सम्मान मिलता है। वेबर का विचार है कि यदि एक अथवा कुछ व्यक्तियों के समाज में सम्मान पूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो उन्हें भविष्य में भी लाभ के अवसर प्राप्त होते रहने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह विशेष अधिकार संपन्न व्यक्ति अनेक प्रकार से आर्थिक और सामाजिक शक्तियों द्वारा अपना अधिकार स्थापित करके प्रगति के अवसरों को बढ़ाते हैं और इस प्रकार अपनी उच्च स्थिति को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा संपत्ति पर अधिकार कर लेने अथवा जीवन के अवसरों में वृद्धि कर लेने से उन्हें सामाजिक सम्मान मिल ही जाएगा। कभी कभी अधिक आय और सामाजिक सम्मान एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। इससे वेबर ने यह निष्कर्ष दिया कि सामाजिक असमानता केवल तब उत्पन्न होती है जब समाज में कुछ व्यक्तियों को भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति इन लाभों को उतनी अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाते अथवा उनसे बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार के फलस्वरूप सामाजिक असमानता अथवा सामाजिक स्तरीकरण का जन्म होता है। वेबर ने यह भी बताया है कि जब कभी सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो इसका कारण सदैव आर्थिक नहीं होता बल्कि प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब उत्पादन के तरीके आविष्कार तथा कार्य करने के ढंग बदल जाते हैं तो उन लोगों का समाज में वही सम्मान नहीं रह जाता जो उन्हें परंपरागत रूप से मिलता रहा था। इसके फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है। वॉटसन का सिद्धांत। सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में वॉटसन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत विभेदीकरण श्रेणीकरण का सिद्धांत अथवा मूल्यांकन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वॉटसन ने इस सिद्धांत को व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से प्रस्तुत न करके इसकी विवेचना संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की ध्यान में रखते हुए की है। वॉटसन के अनुसार प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिन्हें व्यवहार की आवश्यकता प्रतिमान मानते हुए सदस्य से इन्हें उन अनुसार आचरण करने की आशा की जाती है। समाज के जो सदस्य इन नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करते हैं समाज में उन्हें एक उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, जबकि इन नियमों अथवा प्रतिमानों का उल्लंघन करने वाली अथवा इनसे हटकर कार्य करने वाले लोगों को निम्न स्थिति प्राप्त हो जाती है। विभिन्न सदस्य जिस सीमा तक इन नैतिक मूल्यों अथवा प्रतिमानों के प्रति जागरूक अथवा कटिबद्ध होते हैं उसी के अनुपात में उनकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। इस आधार पर पॉर्सन ने विभिन्न मूल्य प्रतिमानों के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए उनका एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इस वर्गीकरण में पॉर्सन ने ऐसे चार मूल्य प्रतिमानों का उल्लेख किया है जिनके पालन अथवा उल्लंघन के आधार पर ही समाज में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण होता है। यह प्रतिमान निस प्रकार है। पहला, अनुकूलन। समाज में कुछ मूल्य प्रतिमान इस प्रकार होते हैं जो समाज में अनुकूल करने के लिए आवश्यक होते हैं। कभी कभी समाज में ऐसी भी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं जब सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सदस्यों के कुछ विशेष व्यवहारों के द्वारा अनुकूल करने की आवश्यकता होती है। इससे तात्पर्य यह है कि सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रकार समाज में अनुकूलन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना है, अथवा यह कहा जा सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा उन व्यक्तियों को उच्च परिस्थिति प्रदान की जाती है जो अनुकूलन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देकर सामाजिक व्यवस्था को अस्तित्व सुरक्षित रखने को योगदान करते हैं। दूसरा, लक्ष्य प्राप्ति। समाज में दूसरी श्रेणी के मूल्य प्रतिमान वे होते हैं जो व्यक्तिगत हितों की तुलना में संपूर्ण समय के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक बल देते हैं। इस दृष्टिकोण से समाज में स्त्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाती है जिससे व्यक्तियों पर दबाव डालकर समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को जागरूक बनाया जा सके। तीसरा, एकीकरण। यह वे मूल्य प्रतिमान हैं जो समाज में एकता तथा संगठन को बनाए रखने के लिए आवश्यकता पर बल देते हैं। समाज का निर्माण जिन विभिन्न इकाइयों से होता है वे एक दूसरे की तुलना में उच्च अथवा निम्न हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से पृथक पृथक कार्य करने के बाद भी वे प्रक्रियात्मक संबंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। यह प्रक्रियात्मक संबंध भी समाज की एकता तथा संगठन को बनाए रखते हैं। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण का उद्देश्य समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों को एक दूसरे से परस्पर संबंधित बनाए रखना है। स्तरीकरण की व्यवस्था के द्वारा उन व्यक्तियों को उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है जो समाज में एकीकरण को बढ़ाने में योगदान करते हैं। चौथा, प्रतिमान स्थिरता। कुछ मूल्य प्रतिमान ऐसे होते हैं जो समाज के सांस्कृतिक प्रतिमानों को स्थायी बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। यह प्रतिमान इस बात पर बल देते हैं कि समाज को प्रत्येक इकाई तथा व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप कार्य करें जिससे सांस्कृतिक प्रतिमानों को सुरक्षित रखा जा सके। इस दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरीकरण का उद्देश्य विभिन्न लोगों की परिस्थितियों तथा भूमिकाओं का इस प्रकार निर्धारण करना है जिससे लोगों के बीच आवश्यक संघर्ष को रोककर सांस्कृतिक प्रतिमानों को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सके। उपयुक्त मूल्य प्रतिमानों का उल्लेख करने के बाद वाटसन ने यह स्पष्ट किया है कि मूल्य प्रतिमान सभी समाजों में स्थिरता और निरंतरता के लिए आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक समाज में यह मूल्य प्रतिमान अवश्य विद्यमान होते हैं। इसके बाद यह भी संभव है कि विभिन्न समाजों में इन मूल्यों प्रतिमानों की प्राथमिकता के क्रम में कुछ अंतर पाया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समाज में अनुकूलन को कुछ सर्वप्रमुख मूल्य प्रतिमान माना जा सकता है, जबकि किसी दूसरे समाज में एकीकरण से संबंधित मूल्य प्रतिमानों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। इस आधार पर वाटसन ने बतलाया कि यदि किसी समाज में इन चारों को आधारभूत मूल्य प्रतिमानों की प्राथमिकता के क्रम को समझ लिया जाए तो यह ज्ञात करना सरल हो सकता है कि उस समाज में व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण प्राथमिकता क्रम में किस प्रकार किया जाएगा। अपने सिद्धांत में वाटसन ने मूल्य प्रतिमानों के रूप में सामाजिक आधार को भी महत्वपूर्ण मानते हुए कुछ ऐसे व्यक्तिगत आधारों का भी उल्लेख किया है जो व्यक्ति की परिस्थिति तथा भूमिका के निर्धारण में महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टिकोण से व्यक्तिगत आधारों को सामाजिक स्तरीकरण का पूरक पक्ष माना जा सकता है। सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्ति को जो उच्च था या निम्न स्थिति प्राप्त होती है उसके निर्धारण में पार्सन ने निम्नांकित 6 आधारों को महत्वपूर्ण माना है। नातेदारी सदस्यता, अर्थात नातेदारी व्यवस्था के व्यक्ति की पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति उसकी उच्च अथवा निम्न परिस्थिति को प्रभावित करती है। दूसरा, व्यक्तित्व गुण। उदाहरण के लिए व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, सुंदरता और बौद्धिक स्तर आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण होता है। तीसरा, उपलब्धियां। इसका संबंध व्यक्ति की व्यक्तित्व कुशलता, प्रतिभा तथा प्रयत्नों से है जिसके अनुसार व्यक्ति को समाज में एक विशेष स्तर प्राप्त हो जाता है। चौथा, संपत्ति। कुछ समाजों में व्यक्ति अपने प्रयत्नों से जितने अधिक धन, पूंजी तथा संपत्तियों पर अधिकार स्थापित कर लेता है उसे समाज में उतने ही उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। पांचवा, प्रभुत्व। प्रभुत्व चाहे वंशानुगत हो अथवा वैधानिक, यह जितनी उच्च प्राकृतिक का होगा समाज में व्यक्ति की स्थिति उसी के अनुसार निर्धारण होने लगती है। छठा, शक्ति या सत्ता। अपनी विभिन्न उपलब्धियों के गुणों तथा अधिकारों के द्वारा व्यक्तियों को दूसरों को आदेश देने के लिए जितनी शक्ति प्राप्त हो जाती है उसे भी स्तरीकरण की व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति का आधार माना जा सकता है। इस प्रकार पार्सन ने यह निष्कर्ष दिया कि एक और विभिन्न मूल्यों प्रतिमानों के द्वारा व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि उसके समाज में जिस मूल्यों प्रतिमानों को जितना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है उसे प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति उतना ही अधिक प्रयत्न करे। दूसरी ओर अनेक व्यक्तित्व आधारों पर समाज इस बात का मूल्यांकन करता है कि व्यक्ति को समाज में कौन सी परिस्थिति प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण से पार्सन सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को प्रक्रियात्मक रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए यह स्वीकार करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण मूल्य प्रतिमानों को प्रभावपूर्ण बनाने एवं व्यक्ति कुशलता से वृद्धि करने वाला एक प्रमुख आधार है। प्रक्रियात्मक सिद्धांत डेविस तथा मूरे। सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या में इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से किंग्सले डेविड तथा विल्वे मूरट ने प्रस्तुत किया है। सामाजिक स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत इस धारणा को आधारित है कि यह स्थिति सामाजिक संगठन के लिए उपयोगी होती है। इस सिद्धांत से संबंधित प्रमुख विचारों को निम्नलिखित क्रम में समझा जा सकता है। पहला, कोई भी सामाजिक संगठन अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह कार्यात्मक रूप से उपयोगी हो अथवा व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता हो। दूसरा, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक संगठन में व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों में वे कार्य जिनका संबंध स्वयं सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए होता है सबसे अधिक आवश्यक समझे जाते हैं। तीसरा, यदि सामाजिक संगठन को अधिक समय तक जीवित रखना हो तब यह आवश्यक हो जाता है कि योग्य व्यक्ति एक निश्चित ढंग से इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें। चौथा, जो कार्य सामाजिक रूप से अधिक उपयोगी होते हैं उनको पूरा करने के लिए अधिक योग्यता और व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन कार्यों से संबंधित कर्तव्य और दायित्व भी अधिक होते हैं। इसके फलस्वरूप प्रत्येक समाज में इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत सीमित होती है। पांचवा, प्रत्येक समाज को इस प्रकार दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम तो यह कि महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह योग्य व्यक्तियों द्वारा हो सकता है और दूसरी यह कि ऐसे कार्यों को करने के लिए व्यक्ति अपनी योग्यता में सदैव वृद्धि करने का प्रयत्न करते रहे। छठा, इन समस्याओं का हल करने के लिए यह आवश्यक होता है कि विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार के पुरस्कार और सामाजिक सम्मान दिया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपनी कुशलता और योग्यताओं के बदले में आर्थिक और सामाजिक प्रेरणाएँ अधिक मात्रा में दी जाएं। सातवां, सामाजिक व्यवस्था के अंतर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुपात में पुरस्कार या प्रेरणा की काफ़ी नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों को यह विश्वास होना भी आवश्यक है कि महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति ही कार्य कर रहे हैं। आठवां, इसी प्रकार जो व्यक्ति सामाजिक संगठन के लिए उपयोगी कार्य कर रहे होते हैं उनको समाज में विशेष अधिकार मिलने आरंभ हो जाते हैं। नौवां, सामान्य रूप से कहा जाता है कि प्रत्येक समाज में संगठन में विभिन्न व्यक्तियों के बीच सामाजिक सम्मान और अधिकारों की मात्रा में कुछ भेद होना कार्यात्मक रूप से उपयोगी है। इस भिन्नता प्रमुख रूप से तीन दशाओं पर आधारित होती है। सामाजिक संगठन के लिए कौन कौन से कार्य अधिक उपयोगी हैं, दूसरा इन कार्यों को करने के लिए कितने व्यक्ति योग्य हैं, तीसरा समाज को इन कार्यों को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, दसवां इस प्रकार विभिन्न कार्यों की उपयोगिता और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को अपने कार्य के अनुसार ही मिलने वाले अधिक अथवा कम अधिकारों के अनुसार उनके बीच असमान वितरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण अपने आप विकसित होने वाली स्थिति है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक स्तरीकरण के यह सभी सिद्धांत पूर्णतः उपयुक्त नहीं हैं। प्रत्येक समाज के सिद्धांत में अपने कुछ दोष हैं। मार्क और वेबर ने यह मान लिया है कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों के अधिकार की मात्रा भिन्न भिन्न होने के कारण ही सामाजिक स्तरीकरण में उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। यदि हम इस बात से विश्वास कर ले तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जो व्यक्ति श्रमिक अथवा मध्यम वर्ग में जन्म लेते हैं वे कभी भी स्तरीकरण की व्यवस्था में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वास्तव में यह बात गलत है। इतिहास बताता है कि संसार में अधिकांश बड़े नेताओं का जन्म सामान्य परिवारों में ही हुआ था। दूसरी ओर कार्यात्मक सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि इनके अंतर्गत प्रत्येक स्थिति को सामाजिक उपयोगिता के आधार पर न्यायसंगत ठहराने का प्रयत्न कर दिया गया है। इसलिए यह मान लेना आवश्यक होगा कि सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को अनेक सांस्कृतिक परिस्थितियों में धीरे धीरे विकसित है, यह भी एक परिस्थिति की परिणाम ही नहीं। सामाजिक स्तरीकरण के कार्य अथवा महत्व। सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना करने वाले विद्वानों का विचार है कि सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था जब प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है तो इसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता का होना आवश्यक है। उनका तर्क है कि यदि सामाजिक स्तरीकरण समाज में उपयोगी ना हो तो इसका प्रभाव इतना व्यापक और स्थायी नहीं रह सकता। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक विचार है कि सामाजिक असमानता की एक संस्थागत पद्धति के बिना कोई समाज कठिनता से ही जीवित रह सकता है। वास्तविकता यह है कि संसार में सभी स्त्री और पुरुष यह जानते हुए भी कि उनके काम के अनुसार उन्हें अधिक पुरस्कार मिलेंगे सामान्य कार्य क्षमता में अपना कार्य नहीं कर पाते। समाज में सभी व्यक्तियों को चाहे बिल्कुल समान बना दिया जाए लेकिन फिर भी उनमें कुछ व्यक्तियों द्वारा दूसरों से आगे निकल जाते हैं। इस स्थिति में सामाजिक असमानता की एक व्यवस्था का विकसित हो जाना स्वाभाविक है। निम्नलिखित विवेचन में हम व्यक्ति तथा समूह के लिए सामाजिक स्तरीकरण द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख करके इसके महत्व को स्पष्ट करेंगे। व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण के कार्य। पहला, आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति के आवश्यकताएं अनंत हैं। इनमें भी प्रत्येक आवश्यकता की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है। कुछ आवश्यकताएं औपचारिक संगठनों द्वारा पूरी की जा सकती हैं, जबकि कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अनौपचारिक समूहों का सदस्य बनना आवश्यक होता है। वर्तमान युग में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति केवल तब करता है जब समाज में विशेषीकरण, श्रम विभाजन और औद्योगिकरण उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण इन सभी दशाओं का प्रोत्साहन देकर व्यक्ति को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग देता है। दूसरा, अधिक कार्य की प्रेरणा। प्रत्येक समाज में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न भिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। किन कार्यों को समाज में अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है और उन्हें पूरा करने वाले व्यक्तियों को अधिक पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रेरणा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से ही मिल सकती है। ट्यूमिन का कथन है कि प्रसिद्धि पाने और बड़ा बनने की इच्छा सभी व्यक्तियों में होती है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था व्यक्ति को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है और इस प्रकार उसे पहले की अपेक्षा उच्च स्थिति प्राप्त करने का आश्वासन देती है। तीसरा, पारस्परिक संघर्षों के रक्षा। सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न व्यक्तियों को पारस्परिक संघर्षों से बचाना और उन्हें एक दूसरे का सहयोगी बनाना है। समाज में यदि स्तरीकरण की कोई व्यवस्था ना होती तो सभी व्यक्ति बिना अपनी योग्यता और कुशलता को देखे हुए सभी अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते। इसके परिणाम स्वरूप निश्चय ही संघर्षों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि होती। इसके विपरीत सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था प्रत्येक पद के दायित्वों को निर्धारित करती है और इनसे संबंधित अधिकार तभी प्रदान करती है जब व्यक्ति उन दायित्वों को पूरा करने के योग्यता दिखाए। इस प्रकार विभिन्न अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं होता, बल्कि व्यक्ति एक सहयोगपूर्ण वातावरण में अपने उन अधिकारों को योग्य बनाने की कोशिश करते हैं। चौथा, मनोवृत्तियों का निर्धारण। ओल्सेन का कथन है कि सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख कार्य मानव क्रियाओं और मनोवृत्तियों का निर्धारण करना है। समाज विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न पद और अधिकार देकर उन्हें यह बतलाता है कि उनकी क्रियाओं और मनोवृत्तियों का वास्तविक स्तर क्या है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मनोवृत्तियों के बारे में जागरूक बनाकर उन्हें अपना विकास स्वयं करने की प्रेरणा देता है। पांचवा, शक्ति का संतुलन। सामाजिक स्तरीकरण समाज के सभी सदस्यों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। स्तरीकरण की व्यवस्था में जिन व्यक्तियों को राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार मिल जाते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। दूसरी ओर जिन व्यक्तियों को सामाजिक स्तरीकरण में अधिक अधिकार नहीं मिलते उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार दूसरा वर्ग पहले वर्ग पर हमेशा इस बात का दबाव डालता है कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे। इसके फलस्वरूप अधिकार संपन्न वर्ग अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर पाता, जबकि समाज का सामान्य वर्ग पहले वर्ग की अधिकार शक्ति के कारण हमेशा नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। इससे समाज में शक्ति का संतुलन बना रहता है। समूहों के लिए सामाजिक स्तरीकरण के कार्य, यही तो ठीक है। ओल्सेन का कथन है कि समूह के लिए स्तरीकरण के प्रमुख सामाजिक परिवर्तन संघर्ष, एकीकरण और प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलते हैं। इस दृष्टिकोण से स्तरीकरण को कुछ प्रमुख कार्यों की विवेचना निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। पहला, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख कार्य परिवर्तन को प्रोत्साहन देकर सामाजिक संगठन को उपयोगी बनाना है। स्तरीकरण के कारण सभी व्यक्ति अपनी योग्यता में वृद्धि करके ऊंचे पदों पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। इसके फलस्वरूप हमेशा नए व्यक्ति पुराने व्यक्तियों का स्थान ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त ऊंची स्थितियों पर पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहारों, मनोवृत्तियों, कार्य के ढंगों और रहन सहन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं। इससे भी सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, सामाजिक संघर्षों से रक्षा। सामाजिक स्तरीकरण समाज के विभिन्न वर्गों को संघर्ष से बचाकर सामाजिक संगठन को दृढ़ बनाता है। इस कार्य के लिए स्तरीकरण की व्यवस्था प्रत्येक वर्ग में अधिकारों का वितरण इस प्रकार करती है कि जिससे प्रत्येक समूह दूसरे समूह के अनियमित कार्यों पर नियंत्रण लगाए रखे। यद्यपि इस कार्य के लिए समाज को विभिन्न व्यक्तियों के बीच शक्तियों, साधनों और सम्मान का वितरण भिन्न भिन्न मात्रा में करना पड़ता है, लेकिन इसी के फलस्वरूप विभिन्न समूह एक दूसरे के संघर्ष में आने से बच जाते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुछ व्यक्तियों की कुशलता में जन्म से ही भिन्नता होती है, जबकि कुछ व्यक्तियों की कार्यकुशलता उनके कार्य करने के ढंगों अथवा विचारों के कारण दूसरे व्यक्तियों से कम या अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में समाज को संघर्ष से तभी बचाया जा सकता है जब समाज में अनेक स्तर बनाकर एक एक स्तर में समान व्यक्ता के व्यक्तियों को स्थान दिया जाए। सामाजिक एकीकरण। यदि समाज में स्तरीकरण की कोई व्यवस्था ना हो तो व्यक्ति को अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही करनी पड़े, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहन देकर इस आशंका को समाप्त कर देता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के फलस्वरूप विभिन्न समूहों और वर्गों के बीच सामाजिक एकीकरण को ही संभावना नहीं बढ़ती, बल्कि वे सम्मिलित रूप से एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चौथा, प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्रगति में योगदान। यह सर्वविदित है कि सामाजिक प्रगति के लिए व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। यदि सभी व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट रहे तो प्रगति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी ओर यदि अधिकांश व्यक्ति मनमाने रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे तो समाज में अव्यवस्था फैलने का डर हो जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक समाज में नियमों की एक ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है जिसके अंतर्गत रहकर ही व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करे। यह कार्य सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा किया जाता है। स्तरीकरण की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यवहार के नियम स्पष्ट करती है। यह उन्हें यह भी बताती है कि दूसरे स्तर के व्यक्तियों के साथ उनके व्यवहार किस प्रकार होने चाहिए। इसके फलस्वरूप समाज में एक आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा होती है और इसे सामाजिक प्रगतिशील बनता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण के उपयुक्त लाभ समाज को केवल तभी मिल पाते हैं जब अधिकांश व्यक्ति अपने सांस्कृतिक नियमों के अनुसार संबंधनों की स्थापना करें और समाज को संगठित बनाने के प्रति सचेत रहें। दूसरी बात यह है कि यद्यपि सामाजिक परिवर्तन संघर्ष एकीकरण और प्रतियोगिता को प्रक्रियाओं के रूप में भिन्न भिन्न है, लेकिन यह तभी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध है। उदाहरण के लिए व्यवहारिक जीवन में यदि सामाजिक परिवर्तन को अच्छा नहीं समझा जाता तो इन प्रक्रियाओं के उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार समाज में यदि संघर्ष की प्रक्रिया नहीं पाई जाती तो वहां एकीकरण होने अथवा सामाजिक परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं रही जा सकती। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण के लाभ एक व्यवस्थित समाज में ही पाए जा सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के आकार। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि स्तरीकरण का प्रत्येक स्थिति में समाज के लिए लाभदायक होना आवश्यक नहीं। यद्यपि सामाजिक स्तरीकरण अनेक कार्यों द्वारा व्यक्तियों और समूह के जीवन को संगठित बनाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही साथ यह व्यवस्था स्वयं ऐसे अनेक दोषों से युक्त है जो इसकी उपयोगिता में संदेह उत्पन्न करते हैं। इन दोषों को ही सामाजिक स्तरीकरण के आकार कहते हैं। पहला, सर्वप्रथम सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था यह जानना अत्यधिक कठिन है कि कौन व्यक्ति अधिक योग्य है और कौन व्यक्ति अधिक योग्य नहीं। साधारणतः जो व्यक्ति एक बार स्तरीकरण की व्यवस्था में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं उनके बच्चों अथवा आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सरलता से ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए श्रमिकों के बच्चों में भी योग्यता और प्रतिभा की कमी नहीं होती, लेकिन उन्हें उच्च स्तर वाले बच्चों के समान उन्नत पर्यावरण और सुविधाएं नहीं मिल पाती। इस कारण वे कठिनता से ही अपनी स्थिति को कोई परिवर्तन कर पाते हैं। दूसरा, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था यद्यपि इसलिए बनाई जाती है जिससे सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकतम अवसर प्राप्त कर सकें, लेकिन एक बार जब विभिन्न स्तरों का निर्माण हो जाता है, तब व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है कि प्रत्येक स्तर के सदस्य अपने से निम्न स्तर के सदस्यों को अपने स्तर में आने से रोकते हैं। इसके फलस्वरूप निम्न स्तर में जो योग्य व्यक्ति है वे अपनी कुशलता में वृद्धि नहीं कर पाते, जबकि उच्च स्तर के व्यक्ति भ्रष्ट और आलसी हो जाने के बाद भी एक लंबे समय तक अपनी स्थिति को उच्च बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्तरीकरण की व्यवस्था सभी व्यक्तियों को विकास को समुचित अवसर प्रदान नहीं करती। तीसरा, कई दशाओं में सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक संघर्षों में भी वृद्धि करता है। ऐसा तब होता है जब विभिन्न स्तरों का निर्माण करते समय किसी स्तर के सदस्यों को बिल्कुल भी अधिकार ना मिले और दूसरे स्तर के सदस्यों को सभी तरह के अधिकार मिलते रहे। यह परिस्थिति कुछ समय तक बनी रहती है और विभिन्न स्तरों के सदस्यों को अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने में बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाती। इससे समाज का विघटन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम भारतीय समाज को ले सकते हैं। यहाँ अनेक जातियों के निर्माण के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था बनाई गई है यह वह कुछ समय के लिए भले ही उपयोगी रही हो, लेकिन हजारों वर्षों से इसने सामाजिक भेदभाव, पक्षपात और संकुचित मनोवृत्तियों को प्रोत्साहन देकर समाज को विघटित किया है। स्पष्ट हुआ कि सामाजिक स्तरीकरण समाज को कुछ फायदे तथा कुछ लाभ देते हैं, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि कुछ सामाजिक स्तरीकरण के जो फायदे हैं उसी को लेकर चलना है तथा इसकी जो बुराइयां हैं उसको हमें ख़त्म करना है।